वंदे। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त राष्ट्रभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, भारत माता की, भारत माता की। चलिए अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए जल्दी जल्दी।
अंतिम समापन सत्र अभी शुरू होता है। यह एकत्रीकरण किस तरह का है इसकी कल्पना सबको है। सभी कार्यकर्ता है, पूर्णकालिक वो भी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष महामंत्री संगठन मंत्री वो भी कार्यकर्ता है। यह अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, सभी का एक दूसरे से परिचय भी हो चुका है। ऐसे अवसर पर पद्धति ऐसी है कि स्टॉक टेकिंग होना चाहिए। स्टॉक टेकिंग अंग्रेजी शब्द है लेकिन उसका मतलब सभी के ख्याल में आता है। हम लोग कहाँ से निकले, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक और आगे चलना है, हमारा गंतव्य स्थान क्या है, यह सब स्टॉक टेकिंग है। व्हेंस, हाउ एंड व्हिदर। तो प्रारंभ में ही यह बतलाया गया और सब लोग जानते हैं कि हमने से निकले, शून्य से निकले। इसके कारण हमारे पास न कोई यूनियन, न कोई कार्यकर्ता था, न एक पैसा था, कुछ नहीं था। और बहुत कठिन परिस्थिति में से बहुत त्यागपूर्वक स्टेटमेंटबाजी के आधार पर नहीं तो खून पसीना बहाकर संगठन आगे बढ़ा। उस समय हमारा तात्कालिक लक्ष्य था कि एक सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाते हमारी गिनती हो जाए। उसके पहले 4 सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमें भी सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाते मान्यता मिल जाए, यह तात्कालिक लक्ष्य था। वह मान्यता मिली। उसके बाद दूसरा तात्कालिक लक्ष्य था कि सेंट्रल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाते तो मान्यता मिली है लेकिन हमारी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इसका वर्णन मैं नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हैं, इस वर्ग में भी बताए गए हैं। तो अपनी विशेषताओं के कारण भारतीय मजदूर संघ वन ऑफ द मेनी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, कई क्षेत्रीय, कई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, यह बात भारतीय मजदूर संघ के बारे में नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ अपने ढंग का अकेला, द ओनली ऑफिस टाइप, सुई जेनेरिस, इस तरह का संगठन है, यह सबके ध्यान में आ जाए, यह दूसरा तात्कालिक लक्ष्य था, वह भी प्राप्त हुआ। फिर था कि गुणवत्ता के नाते द ओनली ऑफिस टाइप होने के बाद भी संख्या के नाते भी हम क्रमांक नंबर 1 पर है, यह मान्यता मिले, यह भी मान्यता मिल गई। और अभी वेरिफिकेशन है, यह बात ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि वेरिफिकेशन में भी हम लोग नंबर 1 पर ही आने वाले हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता वेरिफिकेशन के काम में जुट गए हैं। ऐसे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले वेरिफिकेशन के समय काम किया, आज रिटायर्ड हो गए, उनकी भी सहायता जगह जगह हम लोग ले रहे। और लेबर डिपार्टमेंट, हम उनसे ये नहीं अपेक्षा करते कि आउट ऑफ द वे जाकर हमें फेवर करे, अपेक्षा यही है कि आउट ऑफ द वे जाकर हमें जबरदस्ती से पीछे हटाने का प्रयास न करे। और मेरा ख्याल है कि आउट लेबर डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करेगा। तो वेरिफिकेशन के बाद भी हम क्रमांक एक पर है। इस तरह से अब तक हमारा मार्गक्रमण हुआ है। कहां तक पहुंचना है यह विषय है। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते समय ऐसा ख्याल में आता है कि क्रमांक एक तक हम पहुंच गए, कृतकृत्य हो गए, अब और कहीं आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की धारणा कई कार्यकर्ताओं की है। हम समझ ले कि नंबर एक पर आना, ये इस पर हम नहीं मानते, सरकार कहती है इसलिए नहीं, हम वास्तव में नंबर एक पर है। सरकार कहे या न कहे, मजदूरों की मान्यता हमको है, इसलिए हम नंबर एक पर है। तो नंबर एक पर आना यह हमारा अंतिम गंतव्य स्थान है, ऐसा कई कार्यकर्ता समझते, ये ठीक नहीं है। हमारा अंतिम गंतव्य स्थान और आगे का है। अब यह ठीक है कि शून्य में से यहां तक पहुंचने के लिए कितने साल लगे, 55 से लेकर आज तक यह मार्गक्रमण हुआ, यहां से अंतिम गंतव्य स्थान प्राप्त करते तक भी कई वर्ष लगेंगे, लेकिन वह गंतव्य स्थान हमारे ध्यान में रहे आवश्यक है। और वह अंतिम गंतव्य स्थान यह है कि भारतीय मजदूर संघ, यह भारत का अकेला मजदूर संगठन है, द ओनली लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, देश का एकमात्र मजदूर संगठन यानी भारतीय मजदूर संघ है, यह स्थिति प्राप्त हो यह हमारा अंतिम गंतव्य स्थान है। यह अंतिम गंतव्य स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह प्रश्न है। यह अंतिम गंतव्य स्थान कैसे प्राप्त होगा, यह तो ठीक है कि प्राप्त करने में कई वर्ष लगेंगे, 10-12 साल लग सकते हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंचने वाले हैं क्या, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर बाह्य परिस्थिति में नहीं है। राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी पावर में है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम चल रहा है, इस पर नहीं, बाह्य परिस्थिति पर नहीं है, कार्यकर्ता के मनस्थिति पर है। कार्यकर्ता की मनस्थिति ठीक रहेगी तो हम अंतिम गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। कार्यकर्ता की मनस्थिति ठीक न रही तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अब तक जहां तक हम पहुंचे वहां से भी हम पीछे हट जाएंगे, तो पीछे हटना या आगे बढ़ना यह कार्यकर्ता के मनस्थिति पर अवलंबित है। जब मैं कहता हूं कार्यकर्ता की मनस्थिति, तो उसका मतलब क्या है? यहां बैठे हुए सभी कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ताओं की मनस्थिति उपयुक्त ऐसी है, इसी के कारण शून्य में से यहां तक हम पहुंचे हैं। और कार्यकर्ता की मनस्थिति, इसका मतलब क्या है? तो हम स्वयं अपनी मनस्थिति ठीक रखें, यह अपनी जिम्मेवारी है। परिस्थिति का क्या होगा, इससे ज्यादा महत्व का सवाल है कि कार्यकर्ता स्वयं अपनी मनस्थिति ठीक रखे। और मनस्थिति ठीक रखना, इसका मतलब हम समझ ले, अभी तक ठीक चल रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनस्थिति उपयुक्त है, कुछ लोगों की नहीं है, जो नए लोग हैं, बाहर के यूनियन से आए हैं, इंटक से आए, सीआईटी से आए, एआईटीसी से आए, उनको बीएमएस माइंडेड बनाने में टाइम लगेगा, किंतु जो अपने अच्छे कार्यकर्ता है आज तक उपयुक्त मनस्थिति में है, किंतु उपयुक्त मनस्थिति में ही स्वयं को रखना, इसका मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त कार्यकर्ता का जीवन मूल्य क्या है यह सवाल आता है। जीवन मूल्य यदि ठीक रहा तो कार्यकर्ता उपयुक्त रहेगा, जीवन मूल्य ठीक नहीं रहा तो कार्यकर्ता उपयुक्त नहीं रहेगा। जीवन मूल्य के विषय में आम दुनिया में दो तरह की धारणाएं हैं। एक पश्चिम के कारण और दूसरी अपने संस्कृति के कारण, और पश्चिम का प्रभाव हमारे इंग्लिश एजुकेटेड लोगों पर होने के कारण उपयुक्त जीवन मूल्य के बारे में कुछ संभ्रम लोगों के मन में है। नेपोलियन ने ऐसा कहा कि श्रेष्ठ पुरुष कौन है, जैसा हम कहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता श्रेष्ठ पुरुष होना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुष कौन है, तो उन्होंने श्रेष्ठता की परिभाषा की। वो कहते हैं मेन आर लाइक फिगर्स, पुरुष ये आंकड़ों के जैसे, आंकड़े माने एक दो तीन चार पांच छह, ये जो आंकड़े हैं तो आंकड़ों के समान पुरुष है। मेन आर लाइक फिगर्स, दे आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजिशन दे ऑक्यूपाइड, उनकी कीमत वो किस पोजिशन में है इस पोजिशन के आधार पर उनकी कीमत श्रेष्ठता निश्चित होती है। और उन्होंने उसका उदाहरण दिया 1111, 1111 में एक 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 चारों एक ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू हर एक की एक है, किंतु नेपोलियन कहते कि जो आखिरी है उसको एक माना जाता है, जो उसके बगल का है उसको दस माना जाता है, उसके पूर्व है उसको सौ माना जाता है, जो पहले उसको हजार माना जाता है, हालांकि इंट्रिंसिक वैल्यू सबकी एक ही है। तो ऐसे पोजिशन के कारण श्रेष्ठता गिनी जाती है, यह नेपोलियन का अभिप्राय। यह एक जीवन मूल्य। दूसरा जीवन मूल्य हमारे यहां कहा गया है, प्रासाद शिखर स्थोपी काको न गरुड़ायते, के कौवा है, कौवा राजमहल के शिखर पर बैठ गया, बड़े ऊंचे पोजीशन पर बैठ गया, और गरुड़ है वह धरती पर खड़ा है। तो गरुड़ धरती पर है, कौवा राजमहल के शिखर पर है, तो भी कौवे को गरुड़ से श्रेष्ठ नहीं माना जाता, गरुड़ को ही श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी पोजीशन क्या है यह सवाल नहीं आता, उसकी योग्यता क्या है यह सवाल आता है। तो दूसरा जीवन मूल्य हमारा है, और ऐसे जीवन मूल्य को लेकर चलना, इस दृष्टि से आज की परिस्थिति अनुकूल नहीं है। इंग्लिश साहित्य में स्टीफन कोवे इस नाम के एक साहित्यिक हो गए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि उन्होंने इंग्लिश में जितना यश साहित्य है, यश साहित्य यानी सक्सेस लिटरेचर जितना है, उसका पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करते करते एक चौंकाने वाली बात, उन्होंने कहा स्टार्टलिंग फैक्ट, चौंकाने वाली बात उनके ध्यान में आई। यह यश साहित्य 200 साल का ऐसा उन्होंने लिखा है, हो सकता है कि किताब लिखने में भी 30-35 साल हुए होंगे, तो उन्होंने लिखा है कि 200 साल का यश साहित्य मैंने पूरा पढ़ा। और चौंकाने वाली बात ऐसी ख्याल में आई कि उसके दो विभाग पढ़ते हैं यश साहित्य के, पहला विभाग कुछ सौ सवा सौ साल का है, बाकी दूसरा विभाग है। और पहले विभाग की विशेषता दूसरे विभाग की विशेषता अलग अलग है। उन्होंने कहा कि साहित्य के पहले विभाग में मुख्य विषय रहता था कि हाउ टू बिकम ग्रेट, स्वयं श्रेष्ठ कैसे बनना, यह विषय रहता था पहले विभाग में। और जो दूसरा विभाग शुरू हुआ है उसमें विषय रहता था हाउ टू अपीयर ग्रेट, हम खुद को बड़ा कैसे दिखाए। माने पहले विभाग में था कि खुद कैसा बड़े हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। दूसरे विभाग में था कि हम अपने को श्रेष्ठ कैसे बताए दुनिया को, दिखाना। और फिर उन्होंने दोनों का अध्ययन करते हुए कहा था कि जो श्रेष्ठ बनते हैं उनकी श्रेष्ठता स्थायी है, लेकिन जो केवल दिखाने के लिए, आपने वो किताब पढ़ी होगी डेल कार्नेजी की है, हाउ टू विन पॉपुलैरिटी, ये जो किताब उनकी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड बिकम पॉपुलर, ये डेल कार्नेजी की किताब है। तो इस किताब के अनुसार केवल जो टैक्टिक्स है, कुछ युक्ति प्रयुक्ति से अपने को बड़ा दिखाना, तो ये जो बड़प्पन है यह बड़प्पन टिकता नहीं, ज्यादा दिन हो नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, यह दुर्भाग्य की बात है कि सारे वायुमंडल में उन्होंने पहले को कैरेक्टर इथिक कहा है, दूसरे को पर्सनैलिटी इथिक कहा है। आज वायुमंडल में पर्सनैलिटी इथिक ही चल रहा है। सार्वजनिक जीवन में होड़ लगती है कि हम बड़े हैं कैसे दिखाया जाए, और समकालीन प्रसिद्धि के भरोसे अपना बड़प्पन दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए संगठन हो न हो, गुणवत्ता बढ़े न बढ़े, लेकिन अपने को श्रेष्ठ ऐसा कैसा प्रोजेक्ट किया जाता है, आविष्कृत किया जाता है, यह प्रयास हो रहा है। 1947 के पहले ऐसा नहीं था, वहां सब लोग त्याग को, गुणवत्ता को जीवन मूल्य मानते थे, उसके अनुसार अपना जीवन चलाते थे। 1947 के बाद अब ये पर्सनैलिटी एथिक आ गया है, अपने को बड़ा बताने के लिए समकालीन प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है और पोजीशन कैसे प्राप्त हो सकती है। जैसे नेपोलियन ने कहा था कि दे आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे ऑक्युपाई, ये पोजीशन कैसे प्राप्त हो सकती है, इसकी स्पर्धा सार्वजनिक जीवन में हिंदुस्तान के चल रही है। ऐसे परिस्थिति में कार्यकर्ता की मनस्थिति उपयुक्त रखना बहुत कठिन है। केवल बौद्धिक वर्ग से नहीं रखा जा सकता, जब तक कार्यकर्ता स्वयं इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है तब तक उसको अच्छा रखना बहुत कठिन है। मैं एक प्रसंग में उपस्थित था, पूजनीय डॉक्टर अंबेडकर जी का दीक्षांतरण हुआ, धर्मांतरण हुआ, उसके एक दिन पूर्व उन्होंने अपने 40-42 कार्यकर्ताओं को श्याम होटल में नागपुर के एकत्रित बुलाया था, और जो ही अपने विचार है वो सब उनको देने की उनको जल्दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि थोड़े ही दिन में उनका अंतकाल आने वाला है। दिन भर वो कार्यकर्ताओं के साथ थे, अनौपचारिक चर्चा चली थी। उस समय बूढ़े कार्यकर्ता ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा देखा है कि कई कार्य, कई संस्थाएं निर्माण होती है, बढ़ती है, बहुत ऊपर जाती है और फिर नीचे भी गिर जाती है, तो ये क्या मामला है? संस्थाएं ऊपर क्यों जाती है, नीचे क्यों आती है? तो बाबा ने हंसकर बोला, बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं क्या दूं? तुम्हारे प्रश्न का जवाब 2000 साल पहले भगवान बुद्ध ने दिया है। तो सबको आश्चर्य हुआ, लोगों ने पूछा क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि जहां उपेक्षा है वहां काम बढ़ता है, जहां उपेक्षा नहीं है वहां काम घटता है। बैठे हुए हम सब लोगों को लगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, ये गलती से कुछ तो भी शब्द इधर का उधर हो गया है, क्योंकि जहां उपेक्षा है वहां काम बढ़ता है, कैसे हो सकता है? बाबा समझ रहे थे, उन्होंने हंसकर कहा कि आप समझ रहे कि मेरी स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है। भगवान बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का प्रयोग टेक्निकल अर्थ में किया है, एक विशेष अर्थ में किया है। क्या है वह अर्थ? उन्होंने कहा, क्योंकि उनको भी भिक्षु संघ संगठित करने का काम करना था, उन्होंने कहा कि कोई भी काम शुरू होता है लोग उसके बारे में उदासीन रहते, होगा कुछ, क्या करना है? तो इस सब उदासीनता को लेकर उसके कारण कुछ लोग निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, किंतु फिर भी कुछ लोग काम आगे बढ़ाते हैं। काम कुछ आगे बढ़ा तो उसके तरफ उदासीनता दिखाना संभव नहीं होता लोगों के लिए, उसकी दखल तो लेते हैं लेकिन उपहास करते हैं, ये क्या है, फालतू काम है, उपहास करते हैं। लोगों का उपहास सुनकर कुछ लोग निराश हो जाते हैं, वो भी काम छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लोग काम करते रहते हैं, उनके काम के कारण काम और आगे बढ़ता है। काम आगे बढ़ने के बाद ये संभव नहीं होता कि उसकी दखल न ली जाए, उसका प्रत्यक्ष विरोध शुरू हो जाता है, और विरोध के समय कुछ लोग निराश होकर और बैठ जाते हैं, तो भी कुछ लोग अपना काम चलाते रहते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते विरोध पर मात करते हुए काम आगे बढ़ता है। जब विरोध पर मात करते हुए काम आगे बढ़ता है तो यश का शिखर दृष्टिपथ में आता है। बाबा ने कहा कि ऐसे समय जो कार्यकर्ता शुरू से लेकर अभी तक इतना संघर्ष करते हुए, त्याग करते हुए लगातार काम करते आए, उनके मन में परिवर्तन होने की संभावना रहती है, उनके मन में परिवर्तन होने की संभावना। बाबा ने कहा कि ऐसे समय जो कार्यकर्ता शुरू से लेकर अभी तक इतना संघर्ष करते हुए, त्याग करते हुए लगातार काम करते आए, उनके मन में परिवर्तन होने की संभावना रहती है, उनके मन में परिवर्तन होने की संभावना रहती है। क्या परिवर्तन? अभी तक तो केवल काम करना इतना ही जानते थे, लेकिन जब यश का शिखर दिख रहा है, फिर कुछ कार्यकर्ताओं के मन में क्रेडिट शेयरिंग की इच्छा होती है। क्रेडिट शेयरिंग का मतलब होता है कि इतना जो काम बढ़ा है, इस काम बढ़ाने में हमारा श्रेय कितना था, हमारा योगदान कितना था, हमारे कारण कितना काम बढ़ा, यह दिखाने की होड़ लगती है। और इस होड़ में, क्रेडिट शेयरिंग के होड़ में, कई कार्यकर्ता दौड़ने लगते हैं कि मेरा काम ज्यादा था, मेरा क्रेडिट ज्यादा था। ऐसे समय जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो पायोनियर्स है, जो प्रवर्तक है, ऐसे कार्यकर्ता यदि इसी होड़ में दौड़ने लगे कि मेरा क्रेडिट कितना ज्यादा है, तो काम घटता है। किंतु उन्होंने यदि उपेक्षा की, और इसी अर्थ में भगवान बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का प्रयोग किया कि पायोनियर्स, प्रवर्तक, प्रमुख कार्यकर्ता, इन्होंने क्रेडिट लेने के यदि उपेक्षा की, उसकी फिक्र नहीं की, अपनी जगह बैठे रहे, कोई कितना भी क्रेडिट ले हमें क्या करना है, काम बढ़ना चाहिए, अपने क्रेडिट के लिए दौड़ना इन्होंने जो उसकी उपेक्षा की, तो फिर काम बढ़ता है। कार्यकर्ता के मनस्थिति में परिवर्तन आने का वह क्षण रहता है कि जब यश का शिखर दिखता है। ऐसे स्थिति में एक भावना निर्माण होती है कि मेरा क्रेडिट कितना है, और इसके कारण एक स्टेटस कॉन्शियसनेस निर्माण होता है। स्टेटस कॉन्शियसनेस में यह आता है कि मेरा ओहदा कौन सा है, मेरी स्टेटस क्या है, मेरा हुद्दा कौन सा है, मेरा पदाधिकार कौन सा है, मैं प्रेसिडेंट हूं या जनरल सेक्रेटरी हूं या ट्रेजरर हूं, कौन सा स्थान मुझे प्राप्त हुआ है, यह बात आती है। और कार्यकर्ता का मूल्यांकन दोनों दृष्टि से होता है। जैसे नेपोलियन ने कहा कि पोजीशन कौन सी है, इस पर मूल्यांकन होना एक, और योग्यता कितनी है उस पर मूल्यांकन होना दूसरा, ये दोनों तरह से मूल्यांकन होता है। हमारे द्वारका प्रसाद जी मिश्र कहते थे कि किसी भी संस्था को नीचे लाना है तो उसके लिए यह बड़ा लंबा रास्ता है द्राविड़ी प्राणायाम। द्राविड़ी प्राणायाम मैंने ऐसा प्राणायाम करना कि उस संस्था के लोगों को जेल में डालना, उनको टॉर्चर करना, उनकी बदनामी करना, यह बड़ा लंबा रास्ता है। हमने पूछा संस्था को नीचे लाना है तो यह छोड़कर कौन सा रास्ता हो सकता है, तो उन्होंने कहा इतना करना ही नहीं पड़ता। आश्चर्य बोले जो पॉलिटिक्स में वो पॉलिटिक्स नहीं जानते, इतना करना ही नहीं पड़ता, किसी के खिलाफ बोलने की आवश्यकता नहीं, किसी को टॉर्चर करने की जेल में डालने की आवश्यकता नहीं, एक काम कीजिए जो मानस शास्त्र के अनुकूल है, क्या है, उस संस्था में कंफर्ट लविंग कैडर्स एंड स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स पैदा कीजिए। घर में बैठिए आप देखिए 5-7 साल में वह संस्था नीचे आएगी, और ये आसान है, मानस शास्त्र के अनुकूल है। कंफर्ट लविंग आदमी हो ही जाता है कंफर्ट देने से, स्टेटस में स्टेटस कॉन्शियस ने जगह में कोई कठिन काम नहीं है। किसी को पार्लियामेंट का टिकट मिला तो उसको बताना, अरे भाई उसको टिकट मिला है तुमको क्यों नहीं मिला, तुम्हारी योग्यता ज्यादा थी, तो अपनी योग्यता ज्यादा है यह किसी को भी बताने के बाद उसको बात जच जाती है। तो स्टेटस कॉन्शियसनेस निर्माण होना, दो बातें यदि हो जाए तो चुपचाप बैठिए संस्था नीचे आएगी। ऐसा सब जोर दिखाई देता है, लेकिन आज हिंदुस्तान के वायुमंडल में, सार्वजनिक जीवन में स्टेटस कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा है। उसका परिणाम हमारे कार्यकर्ता के मन पर न हो, उसको बचाना इस मनोवृत्ति से, यह हमें प्रयत्न पूर्वक करना होगा, लेकिन उससे ज्यादा कार्यकर्ता ने स्वयं आत्मनिरीक्षण करते हुए इस स्टेटस कॉन्शियसनेस से खुद को बचाना है। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र में स्टेटस कॉन्शियसनेस बहुत रहता है। एक ही छोटी सी बात यदि कहूं तो बड़े बड़े लोगों में भी स्टेटस कॉन्शियसनेस रहा है। छोटा सा उदाहरण, त्रिपुरा कांग्रेस थी, उसके लिए निर्वाचन करना था अध्यक्ष का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनके खिलाफ पट्टाभि सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था, दोनों में टक्कर हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनकर आए, पट्टाभि सीतारामैया गिर गए, तो महात्मा जी ने कहा कि पट्टा भी सीतारामैया डिफीट इज माई डिफीट। गांधी जी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा कि हिज डिफीट इज माई डिफीट। तो स्टेटस कॉन्शियसनेस कितना राजनीतिक क्षेत्र में चलता आया है इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। किंतु हम यह जानते हैं कि जो स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स है वो कोई भी बड़ा काम खड़ा नहीं कर सकते। स्टेटस तो प्राप्त कर सकते हैं, स्टेटस प्राप्त करना इसके लिए समकालीन प्रसिद्धि उपयुक्त तो होती है, कुछ तिकड़मबाजी उपयुक्त तो होती है, इसकी टांग खींचो, इसको इधर ढकेल दो, उसको उधर ढकेल दो, सामने आ जाओ, ये टेक्निक सब जानते, स्वाभाविक रूप से जानते, ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसे लोग कोई बड़ा काम खड़ा नहीं कर सकते। बड़ा काम वही खड़ा कर सकते हैं जो बिल्कुल स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। केवल काम यशस्वी हो, संगठन यशस्वी हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूर्ण रूपेण कार्य समर्पित ऐसे लोग ही बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। इटली का हम उदाहरण देखते हैं। पिछले शताब्दी में इटली पारतंत्र में था, विदेशियों का साम्राज्य उसके ऊपर था, उसके खिलाफ लोगों को तैयार करना कठिन काम था और वो गुप्त रीति से करना था। मेजिनी, जोसेफ मेजिनी ने यह कार्य शुरू किया, जगह जगह गए, गुप्त रूप से कार्यकर्ताओं के दल खड़े किए और सारे इटली के जवान लोगों में यह भावना निर्माण की कि इनको हटाना है, इनके खिलाफ लड़ना है। तो सारा संगठन साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो निर्माण हुआ वो जोसेफ मेजिनी ने निर्माण किया। किंतु एक समय आया जब प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू करनी थी। जोसेफ मेजिनी ने सबको बताया कि भाई अभी तक नेतृत्व मेरे पास था, लोगों को जागरूक करना, तैयार करना, मानसिकता तैयार करना, यह काम था वो मैं कर सकता था, लेकिन अब लड़ाई में नेतृत्व करना है वो मेरे बस की बात नहीं है, उसके लिए जोसेफ गैरिवाल्डी को नेता बनाना होगा। लोगों ने कहा ये कैसे, शुरू से अब तक आपने नेतृत्व किया और अब दूसरे को नेता बना रहे जिसने इस काम में कोई ज्यादा हिस्सा भी नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, युद्ध का नेतृत्व वह यशस्वी रीति से कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, गैरिबाल्डी हमारा नेता होगा। और लोगों ने इस बात को मान्यता देनी चाहिए, इस हेतु जोसेफ मेजिनी ने स्वयं गणवेश पहनकर गैरिबाल्डी के प्लेटून में शामिल हो गए, हाथ में राइफल लेकर। आज कोई राजनेता ऐसा कर सकता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो स्वयं काम खड़ा करने के बाद भी दूसरे को नेता बनाना, क्योंकि समय की आवश्यकता है, तो कार्य समर्पित व्यक्ति ही यह कर सकता है, स्टेटस कॉन्शियस आदमी यह नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने संगठन है उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन सबसे मजबूत है। यह केवल देश में नहीं, विदेश में भी मान्यता है। अमेरिका यूरोप के लोग भी मानते हैं कि संघ का संगठन यह सबसे सघन है, घनिष्ठ है, वो भी मान्यता देते हैं। और यह घनिष्ठ कैसे हुआ, मैं इंटक में था, इंटक कांग्रेस का ही एक अंग है, तो हमको दूसरे जीवन मूल्य का परिचय होता था। जहां पोजीशन को महत्व दिया जाता है मैं प्रेसिडेंट हूं तो बड़ा हूं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं मैं बड़ा हूं, लोग भी उसको बड़ा मानते हैं। इस तरह की जहां मान्यता है, इस वायुमंडल में हम इंटक में रहे, कम्युनिस्ट इंडियन में भी इसी वायुमंडल में रहे। तब मुझे ध्यान में आया, वैसे तो मैं 1942 से प्रचारक रहा हूं, वो ध्यान में नहीं आता था जब मैं शाखा में जाता था उस समय। इंटक और कम्युनिस्ट यूनियन में रहने के कारण मुझे फिर ध्यान में आया, कह रही ये वायुमंडल दूसरा है, संघ का वायुमंडल दूसरा है। संघ में ये भावना किसी के मन में नहीं रहती कि पदाधिकार किसका क्या है, सभी कार्य करते रहते। पदाधिकार माने केवल व्यवस्था का हिस्सा है, पदाधिकार ये उच्चता नीचता का हिस्सा नहीं है, पदाधिकार केवल व्यवस्था का ही है। अब मुझे स्मरण हुआ, मैं जब नागपुर में आया तो सर कार्यवाह के नाते माननीय मल्हारराव काळे थे। उस समय हमको फील नहीं हुआ, इंटक में जाने के बाद मुझे फील हुआ, कह रहे ये सर कार्यवाह थे। बाद में उनको सर कार्यवाह नहीं रखा गया, माननीय अपाजी जोशी को रखा गया। मल्हारराव काळे उसी तीव्रता से काम करते थे, उसी तेजी से काम करते थे जैसे सर कार्यवाह के नाते रहते हुए वो काम करते थे। बाद में देखा तो माननीय अप्पाजी जोशी सर कार्यवाह, सर सरकार वह बाला साहब देवरस है, और उसके बाद में देखा कि बाला साहब देवरस सर कार्यवाह, अप्पाजी जोशी सर सरकार। किसी के दिमाग में ये नहीं, उनके भी दिमाग में नहीं, अरे मेरी पोजीशन तो नीचे आ गई। समान तेजी से समान तीव्रता से काम कर रहे। कुछ दिन बाद देखा कि दोनों पदाधिकारी ने माननीय भैयाजी गाणी पदाधिकारी हो गए, तो भी समान तीव्रता से समान तेजी से बाला साहब अप्पाजी काम कर रहे। ये भावना ही नहीं कि पदाधिकार के कारण किसी की पोजीशन होती है, पोजीशन का सवाल नहीं है, कार्य करता है, काम करते रहना है। और बहुत लोगों को इसका पता नहीं है कि संघ में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है। दुनिया मानती है, बहुत सारे स्वयंसेवक भी मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पद सरसंघ चालक का, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है। संघ के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट लिखा है सरसंघ चालक यह सबसे ऊंचा ओहदा नहीं है। सरसंघ चालक को कहा गया है गाइड एंड फिलोसोफर, मार्गदर्शक और तत्व ज्ञान देने वाला, ही इज नॉट एन ऑफिस बेयरर। तो प्रमुख सबसे कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सर कार्यवाह। किंतु सर कार्यवाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हुए भी दुनिया को इसका पता नहीं है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, जो पदाधिकारी किसी पद पर नहीं है, ऐसे सरसंघ चालक को स्वयंसेवक भी सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, दुनिया भी श्रेष्ठ है ऐसा मानती है। चमत्कार की बात है। और यह जो पोजीशन कॉन्शियसनेस संघ में नहीं है, इसी के कारण संघ के संगठन की सघनता है, घनिष्ठता है। संघ के संगठन की सघनता की सघनता का बीज इसमें है कि सब अपने को केवल कार्यकर्ता समझते, पदाधिकार के कारण ये बड़ा ये छोटा नहीं मानते, सब कार्यकर्ता है, केवल व्यवस्था के लिए किसी को किसी पद पर रखा गया है ऐसा मानते हैं। और यह जो संघ में हो सका, इसका कारण परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की जो मनस्थिति थी, उसमें इसका रहस्य हम खोज सकते हैं। उनकी मनस्थिति क्या थी इसका, उन्होंने स्वयं विवरण किया है, हम वह विवरण पढ़े, हम देखें क्या है विवरण। और उनके जो मनस्थिति थी उसके परिणाम स्वरूप बाकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी, पीढ़ी के बाद पीढ़ी जो संघ में आई है, वो उसी मनस्थिति में पल रही है और उसी मनस्थिति को हम हमारा कार्यकर्ता यदि ध्यान में रखता है तो हम बाहर के विषैले वायुमंडल से बच सकते हैं, स्टेटस कॉन्शियस वायुमंडल से बच सकते हैं, स्वयं अपने को उपयुक्त कार्यकर्ता इस नाते रख सकते हैं। और हम यदि स्वयं अपने को उपयुक्त कार्यकर्ता रखेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा जो अंतिम गंतव्य स्थान है, द ओनली लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, इस स्थिति में पहुंचना उसके आधार पर हो सकता है। वह हमारी मनस्थिति न रही तो ये हो नहीं सकता। इस दृष्टि से सरसंघचालक बनने के बाद परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की क्या मनस्थिति थी यह हम जरा देखें और उससे हम योग्य दिशा अपने मनस्थिति को दे, यह आवश्यक है। सो 33 में डॉक्टर जी के डायरी में उनकी मनस्थिति का वर्णन किया गया है, मैं पढ़ रहा हूं। एक माने 1933 के पहले ही वो सरसंघचालक बन चुके थे, सरसंघचालक प्रणाम लिया था, उस समय उनकी मनस्थिति क्या थी ये देखिए। इस संघ का जन्मदाता अथवा स्थापनकर्ता मैं न होकर आप सब है, इसका मुझे पूरी तरह ज्ञान है। सुनाई देता ही ना, इसका मुझे पूरी तरह ज्ञान है। आपके द्वारा उत्पन्न संघ का, मैंने ये नहीं कहा कि मैं संघ का प्रतिष्ठाता हूं, आप प्रतिष्ठाता है, स्वयंसेवक प्रतिष्ठाता है, आपके द्वारा उत्पन्न संघ का आपकी इच्छा एवं आज्ञा से मैं धात्री का काम कर रहा हूं। धात्री यानी दाई, केवल दाई का मैं काम कर रहा हूं आपकी इच्छा से आपकी आज्ञा से। इसके आगे भी आपकी इच्छा और आज्ञा होगी तब तक यह काम मैं करता रहूंगा, तथा यह काम करते हुए कितने भी संकट आए और मानापमान सहन करने की बारी आई तो भी मैं अपना पांव पीछे नहीं हटाऊंगा। परंतु मेरे इस काम के लिए अयोग्य होने के कारण मुझसे संघ का नुकसान होता है ऐसा यदि आपको लगे तो दूसरा योग्य मनुष्य इस स्थान के लिए ढूंढ निकालिए। आपकी आज्ञा से जितने आनंद के साथ मैंने यह पद स्वीकार किया उतने ही आनंद से आपके द्वारा नियोजित व्यक्ति के हाथ में सब अधिकार पद देकर उसी क्षण से उसके आज्ञा पालन के स्वयंसेवक के नाते मैं चलूंगा। कारण मेरे लिए अपने व्यक्तित्व का मूल्य नहीं, संघ कार्य का मूल्य है, और संघ के हित के लिए कोई भी बात करने में मुझे किसी भी प्रकार का अपमान कभी नहीं प्रतीत होता। संघ चालक की आज्ञा का किसी भी परिस्थिति में स्वयंसेवक के द्वारा बिना ननोचच किए पालन किया होना जाना आवश्यक है, तथा नाक से नथ भारी यह स्थिति संघ में कभी भी उत्पन्न न होने देते में सहकार्य का रहस्य है। अतः स्वतः वह आज्ञा पालन कर दूसरे स्वयंसेवक से उसको आज्ञा पालन करना वरना यह प्रत्येक स्वयंसेवक का कर्तव्य है, उनके डायरी में है लिखा है। मैं समझता हूं कि उनकी मनस्थिति क्या होगी यह हम समझ सकते हैं, आज की परिस्थिति क्या है यह भी हम जानते हैं, और उसके कारण संघ का जीवन मूल्य अलग है। इस मनस्थिति के कारण हर दृष्टि से राजनैतिक जीवन मूल्य अलग है, नैतिक जीवन मूल्य अलग है। कई उदाहरण उसके लिए जा सकते हैं, केवल एक ही बात बताकर मैं मेरा भाषण पूरा करूंगा। कि स्वयं सेवक ने कार्यकर्ता ने अपनी मनस्थिति कैसी रखना है। जीवन मूल्य भिन्न होने के कारण ऐसा सोचा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में कि अच्छा कार्यकर्ता कौन है, तो ऐसा माना जाता है कि जिसको बहुत प्रसिद्धि मिलती है, जिसकी जय जयकार होती है और उसके कारण उसको बड़ा बनाकर लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, और होते होते वो जो स्वयं अपने को इंडिस्पेंसिबल बना लेता है। यह हो सकता है, मनुष्य प्रवृत्ति है कि स्वयं अपने को इंडिस्पेंसिबल बनाना, जैसे मैंने कहा कि सब बाकी लोगों को पीछे खदेड़ कर आगे बढ़ जाना, यह हो सकता है। तो जो स्वयं अपने को इंडिस्पेंसिबल बनाता है वह अच्छा कार्य करता है, कि जिसके मृत्यु के बाद लिखा जाएगा कि इसके मृत्यु के कारण संगठन की अपूरणीय क्षति हुई है, इररिपेरेबल लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा जिसके मृत्यु के बाद लिखा जाएगा, और यह लिखने के कारण बाद में वो संगठन घटता भी जाएगा या ऐसे लोग देखेंगे, तो जिसके मृत्यु के बाद संगठन घटता है उसको अच्छा कार्यकर्ता बाहर के सार्वजनिक जीवन में माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जीवन मूल्य दूसरा है। जीवन मूल्य यह है कि जो कार्य बढ़ाते 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 स्वयं अपने को डिस्पेंसिबल बना लेता है, उसके हटने से, उसके ट्रांसफर होने से, उसके मृत्यु से नुकसान नहीं होता, वो लोगों को तैयार करते करते आगे ले जाता है। जो स्वयं अपने को डिस्पेंसिबल बना लेता है वो अच्छा कार्य करता है, ये संघ की धारणा है। दक्षिण और उत्तर ध्रुव का अंतर है। बाहर की मान्यता है कि जो स्वयं अपने को इंडिस्पेंसिबल बनाता है वो अच्छा कार्य करता है, संघ की धारणा है जो स्वयं अपने को डिस्पेंसिबल बनाता है वो अच्छा कार्य करता है। यह जो संघ की धारणा है यह इसी मनोवृत्ति से, इसी मनस्थिति से निर्माण हुई है। यह जो परम पूजनीय डॉक्टर जी की मनस्थिति है वह हर एक हमारा कार्यकर्ता अपने में निर्माण करने का प्रयास करे, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेरिफिकेशन के बाद सरकार और लेबर डिपार्टमेंट क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसके कोई महत्व